नमो हरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आर्याणम नमो वज्रायणम नमो लोये त्रिकालवर्ते सवसाम मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो वै मंगलम कुंदकुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल्य मंगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणं जैनं जयतु शास्त्रम् ओंकार बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः नमः समयसाराय स्वानुभूत्य चकास्ते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावं दर्शिते अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः आत्मज्ञानं स्वयं ज्ञानं ज्ञानात् अन्यत् करोति किं परभावस्य कर्तात्मा मोहयं व्यवहारे मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान नमुता ही चाहते भय अरिहंता धीमा ओम नमः सिद्धेभ्य नमः सिद्धेभ्य नमः सिद्धेभ्य। महावीर परमात्मा का शासन कुनकुन आचार्य भगवान की आमनाई अमरचंद्र आचार्य भगवान की परंपरा में पूज्य गुरुदेव श्री का भरत क्षेत्र में पदार्पण हुआ और जगत के भव्य जीवों को पूज्य गुरुदेव श्री की मंगलमय ओम ध्वनि का लाभ मिला और जिस तरह से भगवान आत्मा की सिद्धि और प्रसिद्धि हुई पूज्य गुरुदेव श्री के वाणी के माध्यम से वह अपने आप में ही एक अचंभा है। पूज्य गुरुदेव श्री की वाणी सुनते लगे बिना नहीं रहता कि सिद्धि तीर्थंकर परमात्मा की वाणी है। उसलिए दृष्टि के निधान में पूज्य गुरुदेव श्री कहते हैं कि ये बात अंदर से आई हुई बात है। सिमंदर परमात्मा और कुनकुन आचार्य भगवान की प्रत्यक्षता में सुनी हुई बात है, वो बात इधर आई है। तो गुरुदेव श्री को पाने पर अपन को सिमंदर परमात्मा मिले, कुनकुन आचार्य देव की वाणी मिली, महावीर परमात्मा का शासन मिला और पूज्य गुरुदेव श्री के महान महान पुरुषार्थ से पूरा भरत क्षेत्र धन्य धन्य हो गया। गुरुदेव श्री की वाणी के अंदर में जो अद्भुतता है, अलौकिकता है, दिव्यता है, वो यह है कि वो पंचम काल के अंत तक 18,500 वर्ष तक भगवान आत्मा की बात भरत क्षेत्र के अंदर में प्रचारित और प्रसारित होती रहे और जगत के भव्य जीव भगवान आत्मा की बात सुनकर पर्याय दृष्टि को मिटाकर द्रव्य दृष्टि करके पर्याय को छोड़ना है, द्रव्य में जाना है, ऐसी अद्भुत दृष्टि करके सभी जीव परिपूर्णता को प्राप्त हो जाएंगे, ऐसा अद्भुत अवसर पूज्य गुरुदेव श्री को पाने को मिला है। इस समय सार परमागम जिसको पूज्य गुरुदेव श्री कहते हैं कि भागवत का भागवत शास्त्र है, भरत क्षेत्र का भगवान है, उसका प्रथम जीव अधिकार, उसकी छठी गाथा जिसके अंदर में पूज्य गुरुदेव श्री दृष्टि का विषय यानी द्रव्य का निश्चय और पर्याय का निश्चय स्पष्ट करते हैं और ध्येय का स्वरूप और ध्येय पूर्वक ज्ञेय का स्वरूप वस्तु व्यवस्था में स्पष्ट करके सभी जीव को आत्मा की उपलब्धि किस तरह से हो, ये विधान इस गाथा के अंदर में बताया। अभी जो अपना दूसरा पैराग्राफ चल रहा है उस पैराग्राफ के अंदर में आचार्य भगवान यह कहते हैं कि ज्ञाकार थवा थी उस भाव को ज्ञायकपना प्रसिद्ध है तो भी ज्ञकृत अशुद्धता उसे नहीं है, क्योंकि कारण के पहली बात तो यह है कि ज्ञान ज्ञाकार हुआ है, उस भाव को जो ज्ञाकार रूप परिणमित हुआ है उस पर्याय को जाननापना प्रसिद्ध है। जगत के जीवों को जाननापना प्रसिद्ध है कि ज्ञान ज्ञेय को जानता है, तो भी ऐसा होने पर भी ज्ञेयकृत अशुद्धता उसे नहीं है। मैंने ज्ञेय से ज्ञान नहीं हुआ, ज्ञेय का ज्ञान नहीं हुआ, ज्ञेय के कारण नहीं हुआ, ज्ञान के अंदर में जो ज्ञान हुआ वो ज्ञेय की सापेक्षता बिना निरपेक्ष बने ज्ञान में ज्ञान पर्याय का ज्ञान हुआ है। कल अपने देखा गुरुदेव श्री के शब्दों में जो ज्ञाकार वह ज्ञानाकार है। ज्ञान ज्ञाकार होता ही नहीं है, ज्ञान ज्ञाकार नहीं होता, ज्ञान ज्ञानाकार होता है। ज्ञान अपने परिणाम रूप परिणमता है, ज्ञ के आकार रूप कहा जाता है लेकिन ज्ञाकार होता नहीं है। अब ऐसा क्यों नहीं होता, ज्ञ कृत अशुद्धता क्यों नहीं है, उसका कारण देते हैं। एक तो ज्ञ की सापेक्षता में ज्ञान नहीं हुआ, ज्ञ के कारण ज्ञान नहीं हुआ, ज्ञ का ज्ञान नहीं हुआ, मैंने ज्ञ के साथ में कर्ता कर्म संबंध भी नहीं और निमित्त निमित्तिक भी संबंध नहीं। वहाँ पे भी उपादान और यहाँ पे भी उपादान, उपादान के अंदर में त्रिकाण उपादान और क्षणिक उपादान, मैंने जहाँ पे देखो वहाँ पे उपादान 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 और उपादान की ही चर्चा है, निमित्त की बात ही नहीं है। निमित्त तो जब ज्ञ के ऊपर दृष्टि जाकर अपनापन होता है तो निमित्त कहलाता है, जैसा निमित्त होता है वैसा यहाँ पे निमित्तिक भाव उत्पन्न हो जाता है, और जब दृष्टि अपने स्वभाव के ऊपर जाती है तो ज्ञ कहलाता है। अब यहाँ पे कारण देते हैं, कारण के ज्ञाकार अवस्था में नायकपणे जे जनायो। अब हुई जो ज्ञाकार अवस्था, ज्ञाकार अवस्था को रखा, ज्ञान के अंदर में ज्ञ प्रतिबिंबित होते हैं, प्रतिभासित होते हैं, जानने में आते हैं, उस ज्ञान की पर्याय के अंदर में क्या जानने में आता है, ऐसा नहीं लिखा ज्ञाकार अवस्था में ज्ञ जानने में आता है, ऐसा नहीं लिखा। ज्ञाकार अवस्था में ज्ञायकपणे जे जनायो, तो अवस्था ज्ञाकार की और जानने में आता है ज्ञायक, जानने में आता है जाननहार, जानने में आता है स्वयं अपना भगवान आत्मा किसको। तो ऐसा नहीं लिखा कि ज्ञानी को अज्ञानी को तीर्थंकर परमात्मा, ऐसा नहीं। ज्ञाकार अवस्था में मैंने सभी की अवस्था ज्ञाकार होती है और सभी को जाननहार जानने में आता है वह। अब जिसको ज्ञायक जानने में आता है, ज्ञाकार अवस्था में जो ज्ञायक जानने में आया वो स्वरूप प्रकाशन की अवस्था में भी ज्ञायक ही है। ज्ञाकार अवस्था में भी ज्ञायक और स्वरूप प्रकाशन की अवस्था में भी ज्ञायक, कितनी अद्भुत बात है। बात का यदि विश्वास आ जाए कि सभी को आबाल उपाल सभी को ज्ञाकार अवस्था में भगवान आत्मा ही जानने में आता है, इस बात का उसको विश्वास नहीं होता, बात सुन तो लेता है लेकिन वो अंतरंग के अंदर में तत्व निर्णय करके इस बात को बैठाता नहीं है। क्योंकि जो ज्ञाकार अवस्था में ज्ञायक जानने में आता है वही ज्ञायक स्वरूप प्रकाशन की अवस्था में भी जानने में आता है। ज्ञाकार अवस्था में भी ज्ञायक और स्वरूप प्रकाशन की अवस्था में भी ज्ञायक, जब स्वरूप का प्रकाशन हुआ, स्वरूप का ज्ञान हुआ, स्वरूप का अनुभव हुआ, तब भी वो ज्ञायक ही है। ज्ञाकार अवस्था में भी ज्ञायक है और स्वरूप प्रकाशन की अवस्था में भी ज्ञायक ही है। क्यों ऐसा क्यों कैसे होता है, तो कहते हैं कि दीवानी जेम कर्ता कर्मनु अनन्यपण हुआ थी। अब एक क्या स्वरूप प्रकाशन के अंदर में कर्ता कर्म का अनन्यपना है, बात क्या है। पूज्य गुरुदेव श्री के शब्दों में एक बार देखे तो दो सौ बीस नंबर का प्रश्न है, उसका अंतिम पैराग्राफ है, भगवान परमात्मा एनी वाणी अने मुनियों की वाणी बेमा फेर नहीं। मुनियो आड़त्या थईने सर्वज्ञनी वाणी कहे छे, भाई तमे सांभळी नथी, तू कोण छो अने तू कोण जाणनारो छो, के हूँ ज्ञायक छु अने हूँ मारी पर्याय ने जाणनारो छु। ए ज्ञाननी पर्याय मारुं कार्य छे, कर्म कर्म एटले कार्य अने करता हूँ छु। खरेखर तो पर्याय करता ने पर्याय ज कर्म छे। वास्तविकता में क्या है, पर्यायी कर्ता और पर्यायी कर्म, पर्यायी के षटकारक पर्यायी के अंदर में, परिणमन रूप षटकारक पर्यायी का पर्यायी के अंदर में, कर्ता कर्म करण संप्रदान अपादान अधिकरण पर्यायी का पर्यायी में है, उसको द्रव्य के साथ में कोई संबंध नहीं है। लेकिन यहाँ पर ज्ञायक भाव कर्ता तरीके सिद्ध करना है, यहाँ पे एजेंडा दूसरा है। वास्तविकता क्या है कि पर्यायी कर्ता और पर्यायी कर्म, द्रव्य त्रिकाला कर्ता और परिणाम करता और परम परिणाम कर्म, ऐसी वास्तविक व्यवस्था है। फिर भी जब कर्ता कर्म के अनन्यपना की बात करते हैं तो स्वरूप प्रकाशन के अंदर में द्रव्य दृष्टि हुई, पर्याय दृष्टि मिटी, स्वरूप दृष्टि होते ही निर्विकल्प अभेद दृष्टि हुई, उस अभेद तत्व के ऊपर अभेद दृष्टि जाते ही जो आत्मा की अनुभूति हुई वो निर्विकल्प अनुभूति, यानी कि अभेद ध्येय पूर्वक अभेद ये हुआ, दृष्टि का विषय अभेद ध्येय और अभेद ध्येय के ऊपर दृष्टि जाते, अभेद वस्तु की दृष्टि होते ही अभेद ज्ञेय होता है, जो ज्ञेय होता है ध्येय पूर्वक जो ज्ञेय होता है वो भी अभेद होता है, वो कर्ता कर्म का अनन्यपना होता है। वहाँ पे द्रव्य और पर्याय ऐसा नहीं होता है, ज्ञायक और ज्ञान ऐसा नहीं होता है, द्रव्य और पर्याय ऐसा भेद नहीं होता। क्यों नहीं होता? द्रव्य पर्याय तो वहाँ पर है लेकिन भेद विकल्प वहाँ पर नहीं है। भेद विकल्प नहीं होने से, निर्विकल्पता होने से ध्येय भी अभेद और ज्ञेय भी अभेद, माने जो अनुभूति में आता है वो आत्मा, आत्मा को आत्मा की अनुभूति होती है ऐसा भी नहीं, पर्याय को द्रव्य की अनुभूति होते है ऐसा भी नहीं। अनुभूति के समय जो कर्ता कर्म का अनन्यपना, माने जानने वाला स्वयं और जानने में आता है वो भी स्वयं, जाननारो पण पोते अने जणाय पण पोते, वहां पे द्रव्य पर्याय की कोई चर्चा ही नहीं है, न द्रव्य पर्याय का कोई भेद विकल्प है। भेद विकल्प क्यों नहीं है? कि वहां पर निर्विकल्पता है। आत्मा की अनुभूति हुई तो उस अनुभूति के अंदर में नया क्षणिक उत्पन्न होता हुआ भेद है। द्रव्य पर्याय तो है लेकिन वहां पर क्या हुआ? मैं परमात्मा। अब मैं परमात्मा की दृष्टि हुई तो बस मैं परमात्मा, वो परमात्मा, मैं अकर्ता, मैं जाननहार, बस वो जैसा है उस तरफ रह जाता है, अकर्ता अकर्ता बने रह जाता है, और उसी को कर्ता कर्म का अनन्यपना कहते हैं, क्योंकि वहां पर भेद विकल्प नहीं है। आत्मा के निज को निज का स्वसंवेदन हुआ, आत्मा को आत्मा की अनुभूति हुई, उस अनुभूति के अंदर में द्रव्य और पर्याय ऐसा भेद विकल्प नहीं होता। निर्विकल्प वस्तु और निर्विकल्प अनुभव, तो निर्विकल्प के अंदर में बस वो स्वयं है, स्वयं को स्वयं का अनुभूति होती है, स्वयं को स्वयं का स्ववेदन होता है, पर्याय को द्रव्य का वेदन होता है या द्रव्य पर्याय आती है, कोई चर्चा ही नहीं वहाँ पर। वहाँ पर क्या है? तो कि वहाँ पर कर्ता कर्म का अनन्यपना, स्वयं जानने वाला और स्वयं ही जानने में आया, जाननारो पण पोते ने जणाय पण पोते। जब भेद ज्ञान की चर्चा करें तब नहीं से दो सत्ता की बात करें, यह कहे के दृष्टि के विषय में स्यादवाद का अभाव है, सम्यक एकांत के पक्ष में आए बिना सम्यक अनेकांत का जन्म नहीं होता। अब वो मैं परमात्मा ही हूँ ऐसा तत्व निर्णय हुआ, ऐसा सम्यक एकांत के पक्ष में आया और मैं परमात्मा हूँ ऐसा भेद विकल्प खटका, तो अनुमान ज्ञान से भी आगे बढ़कर अनुभव ज्ञान में आ गया। उस अनुभव ज्ञान के अंदर में क्या है? तो कि बस मैं आत्मा हूँ, ऐसा अनुभव ऐसा विकल्प नहीं है, क्योंकि मैं परमात्मा हूँ ऐसा विकल्प परमात्मा को पीठ देकर खड़ा होता है, तो वहाँ पे विकल्प नहीं होता, वहाँ वस्तु होती है, वस्तु का अनुभव होता है, अनुभव निर्विकल्प होता है, वहाँ पे ज्ञान और ज्ञेय ऐसा विभाग नहीं होता। उसलिए ये कहते हैं कि तू ये बात का निर्णय कर कि इस विश्व में मेरा कोई ज्ञेय नहीं है, जब तक तुझे भगवान आत्मा ज्ञेय दिखेगा तब तक वो तेरा ज्ञान का ज्ञेय नहीं होगा, क्योंकि ज्ञान भी स्वयं है, ज्ञेय भी स्वयं है और ज्ञाता भी स्वयं है। वस्तु की व्यवस्था इतनी सुंदर है कि भेद ज्ञान कराने के लिए, द्रव्य दृष्टि कराने के लिए, पर्याय दृष्टि छुड़ाने के लिए सारा उपदेश दिया गया, लेकिन जब द्रव्य दृष्टि हुई कि आत्मा समीप में ही पड़ा था, द्रव्य दृष्टि हुई थी, उस द्रव्य दृष्टि के अंदर में द्रव्य पर्याय में नहीं आया, लेकिन द्रव्य की अनुभूति हुई। कैसे हुई? ज्ञायक पणे जणाय हो, ज्ञायक नहीं आया पर्याय के अंदर में, लेकिन ज्ञायक पना आया, माने ज्ञायक का जो सामर्थ्य था वो पूरा ही सामर्थ्य पर्याय के अंदर में आया, तो उसको कहते हैं ज्ञायक पणे जणाय हो, ज्ञायक पणे जणाय हो, ज्ञायक जणाय छे, ज्ञायक अनुभूति में आवे छे, ज्ञायक वेदन में आवे छे। उस अनुभूति के समय जो है बस वो आत्मा है, माने अभेद आत्मा की अभेद दृष्टि और अभेद दृष्टि से अभेद ध्येय की दृष्टि से उत्पन्न हुआ अभेद ज्ञेय, और ज्ञेय भी अभेद है क्योंकि ज्ञान का स्वभाव भेद ग्राह्य नहीं है। पंचाध्यायकर्ता ने ऐसा कहा कि ज्ञान स्वभाव से अभेद ग्राह्य है, ज्ञान कभी भेद को ग्रहण ही नहीं करता, जहाँ पे भेद वहाँ पर मन, जहाँ पे अभेद वहाँ पे ज्ञान, ज्ञान का स्वभाव ही अभेद ग्राह्य है, वहाँ पे ज्ञान और ज्ञेय ऐसा विभाग नहीं होता, पर ज्ञेय और स्वज्ञेय ऐसा नहीं होता, बस जो अनुभूति में आ रहा है वो आत्मा है। पर ज्ञेय के ऊपर से लक्ष्य छूट गया है, स्वभाव के ऊपर लक्ष्य गया है और मैं परमात्मा हूँ ऐसा निर्णय हुआ है, यथार्थ निर्णय हुआ है, पक्का निर्णय हुआ है और उसके अंदर में वो जम गया, वहाँ पे एकत्व हो गया, वहाँ पे अपनापन हो गया, वहाँ पे अहम हो गया, और अहम होते ही जो अनुभूति हुई तो उसके अंदर में करता कर्म झाड़नारो पण पोते अने जणाय पण पोते। द्रव्य पर्याय का विभाग उस अनुभूति में नहीं रहता है, क्योंकि निर्विकल्प अनुभूति में निर्विकल्प वस्तु रहती है, बस निर्विकल्प वस्तु का निर्विकल्प अनुभव, आनंद 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 आनंद। लेकिन जहाँ आनंद के ऊपर दृष्टि गई तो अनुभव से बाहर, आनंद मूर्ति के ऊपर दृष्टि जब तक रहती है तब तक आनंद बहता रहता है, जहां आनंद के ऊपर दृष्टि गई तो विकल्प खड़ा हो जाता है। तो यहाँ पे आचार्य भगवान यह कहते हैं, गुरुदेव श्री क्या कहते हैं पहले उसको देखते हैं। खरेखर तो ये ज्ञानी पर्याय तेनु कार्य छे, ते वक्त नो पर्याय जैसे तेज पर्याय नो करता छे। वास्तविकता तो यह है कि खरेखर ज्ञान की पर्याय वो उनका कार्य है, और उस समय का जो पर्याय है वही पर्याय का करता, माने पर्याय ही करता और पर्याय ही कर्म है, तो वास्तविकता है। लेकिन यहाँ पे उस पर्याय की कर्ता कर्म की बात नहीं करनी है, यहाँ पे तो आत्मा कर्ता और आत्मा कर्म की बात करनी है, यहाँ पे तो परिणामी आत्मा की अनुभूति में परिणामी हुआ उसकी बात करनी है। अपरिणामी पे दृष्टि गई, मैं अपरिणामी हूँ ऐसा विश्वास हुआ, मैं अपरिणामी हूँ ऐसी दृष्टि हुई, परमात्म तत्वों के ऊपर नजर गई, परमात्म तत्वों पे अहम हुआ, परमात्म तत्वों पे एकत्व हुआ, परमात्म तत्वों पे अपनापन हुआ, तो परमात्म भाव से रह गया। जब परमात्म भाव से रह गया तो क्या हुआ, तो कि वो अपरिणामी प्लस परिणाम इज इक्वल टू परिणामी, वो परिणामी हो गया। अब परिणामी आत्मा करता है और परिणामी आत्मा कर्म है, परिणामी आत्मा करता और परिणामी आत्मा कर्म। वहां पे कर्ता कर्म के अंदर में अपरिणामी और परिणाम ये बात नहीं रहती है। जब अनुभूति हुई तब वो परिणामी है, उस परिणामी आत्मा कहो, स्यादवाद कहो, अनेकांत कहो, अनुभूति कहो, जैन शासन की अनुभूति कहो, सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान कहो, कि जो कुछ भी कहना है, बस वो स्वयं है, वो कर्ता कर्म का अनन्यपना है, वो कर्ता कर्म की अनुभूति है, वो एक रूप है, अनेरा अनेरा नहीं है, कर्ता अनेरा और कर्म अनेरा ऐसा नहीं है, अनन्य है, कर्ता कर्म का अनन्यपना, बस वह आत्मा है, वो मैं हूँ, बस अनुभूति के समय जो है वो मैं हूँ, जो है वो आत्मा है। वो अनुभूति की स्थिति अद्भुत होती है, अलग अलौकिक होती है। दृष्टि के विषय की बात अलग है, और जब अनुभूति होती है तब बात अलग है। जब दृष्टि के ऊपर विषय त्रिकाली द्रव्य के ऊपर जब दृष्टि जाती है और अनुभूति होती है तो अनुभूति स्व आत्मा है, वो परिणामी है, वो अपरिणामी भी नहीं होता और परिणाम भी नहीं होता, वो अपरिणामी प्लस परिणाम होता है, उसको परिणामी कहते हैं, उसको प्रमाण ज्ञान कहते हैं, उसको अनुभूति कहते हैं, उसको सम्यक दर्शन कहते हैं, उसको मोक्ष मार्ग कहते हैं, उसको जैन शासन की अनुभूति कहते हैं। उनके मोक्ष के दरवाजे खुल गए उस वक्त जब वो परिणामी हुआ तब। तो स्थिति अद्भुत है। देखिए ऐसा क्यों, ज्ञायक स्वरूप प्रकाशन की अवस्था में पण नायक छे, पोते जाणनारो माटे पोते करता, अने पोताने जाणियो माटे पोते ज करो, पोते जाणनारो माटे पोते करता, अने पोताने जाणियो माटे पोते ज कर, पोते ज न्यायकांत करू, स्वयं करता और स्वयं कर्म। जब भेद ज्ञान की बात करे तब करे परिणाम करता और परिणाम कर्म, प्रमाण की बात करे तब करे द्रव्य करता और परिणाम कर्म। जिनेन्द्र शासन की व्यवस्था नई विवक्षा हो अद्भुत है, नई विवक्षा भी समझ में आ जाए तो ये रमत जिसको खेलने के लिए आती है वो आनंदित होता है, स्वभाव में चला जाता है, न क्योंकि वस्तु नयातीत है, तो जब स्वभाव से वस्तु को देखता है कि मैं तो सर्व नयो से रहित परमात्म तत्व परिपूर्ण तत्व कृत्य कृत्य तत्व स्वभाव से अकर्ता ही हूँ, ऐसा जब विश्वास होता है तो परिणाम अकर्ता बन जाते हैं, और वह कर्ता बनते हुए भी वो कर्ता कर्म का अनन्यपना है। अनुभूति में अकर्ता है, अनुभूति में ज्ञायक है, अनुभूति में परमात्म तत्व है, अनुभूति में भगवान आत्मा है, ये सब कुछ होते हुए भी वहाँ पे भेद विकल्प नहीं है। जहाँ विकल्प वहाँ पे भेद, जहाँ पे ज्ञान वहाँ पे अभेद, जहाँ पे मन वहाँ पे भेद विकल्प, जहाँ पे ज्ञान वहाँ पे अभेद निर्विकल्प। तो इस अभेद निर्विकल्प के अंदर में जो अनुभूति में आया सो आत्मा है, वो मैं हूँ, बस मैं हूँ, मैं हूँ, मैं हूँ, वहाँ कौन करता और कौन कर्म ये चर्चा ही नहीं है, बस मैं जानने वाला और मुझे मैं जानने में आया, ऐसा विकल्प भी नहीं है, ऐसा भेद भी नहीं है, बस मैं हूँ। वो जब विकल्प में आता है तब उसको कर्ता कर्म का अनन्यपना कहते हैं, उसको परिणामी कहते हैं। वो अनुभूति की जो व्यवस्था थी वो परिणामीपना था। ये सहज मात्र में होता है, इसके लिए प्रयत्न नहीं होता। दृष्टि होती है अकर्ता पर, दृष्टि होती है द्रव्य पर, लक्ष्य होता है भगवान आत्मा के ऊपर, और भगवान आत्मा में लक्ष्य होते ही ये परिणाम जब यह कहती है कि मैं परमात्मा हूँ, निष्प्रभाव से स्वभाव भाव का स्वीकार करते हुए, स्वभाव भाव का आदर करते हुए, स्वभाव भाव का सत्कार करते हुए, स्वभाव भाव का सम्मान करते हुए अपना सर्वस्व जब समर्पित कर देती है। तो मैंने कहा था एक बार, गुरुदेव श्री को एक प्रश्न पूछा गया कि साहब कोई भी जीव को आत्मा की अनुभूति हो, किसी भी जीव को आत्मा की अनुभूति हो, तो उसमें किस तरह से आत्मा की अनुभूति होती है। तो गुरुदेव श्री ने ऐसा कहा कि जयरे पर्यायी ने पर्यायी में उभा रहेवा माटे जगह मळती नथी, जयरे पर्यायी ने पर्यायी में उभा रहेवा माटे जगह मळती नथी, एटली हदे सर्वार्पणता थाय छे त्यारे ए परिणाम नी अंदर में अनुभूति होय छे। जब पर्यायी को पर्यायी में खड़े रहने की जगह नहीं मिलती है, इतनी सर्वार्पणता होती है, तब उस पर्यायी के अंदर में अनुभूति होती है। और दूसरा एक प्रश्न पूछा था कि साहब किसी को अनुभूति हो गई, अनुभव हो गया, अनुभव के पश्चात विकल्प में आया, तब कौन सा विकल्प होता है, क्या विकल्प होता है? तो उसका गुरुदेव श्री का उत्तर यह था कि आत्मा की अनुभूति हुई, अनुभूति में असंख्य समय बीता, बाहर आया, तो सबसे पहला विकल्प यह आता है कि आत्मा की अनुभूति आटली सरल थी तो अनंत काल संसार में गयो केवी। आत्मा की अनुभूति इतनी सरल थी तो अनंत काल संसार में गया था। मैं आत्मा की अनुभूति स्वयं है ना, तो स्वयं की अनुभूति कठिन नहीं हो सकती है। वस्तु को जहां से देखना है, जैसे देखना है, आज के प्रवचन में पूज्य गुरुदेव से ने अनुभूति का पूरा विधान बतला, वो विधान यदि उसको समझ में आवे, जब तक समझ में नहीं आया तब उसी का स्वाध्याय करता रहे। 14 गाथा का क्या कहते हैं गुरुदेव, किस तरह से अनुभूति होती है, संकित कैसे होता है, द्रव्य दृष्टि किसको कहते हैं। बाबूजी के शब्दों में पर्यायी ने अपना कोने कोना खाली कर दिया। जब पर्यायी द्रव्य की पूरी समर्पणता कर देती है, उस परिणाम के अंदर में द्रव्य प्रसर जाता है, द्रव्य फैल जाता है, द्रव्य पूरे पूरे में फैलाई जाए छे, तब उस परिणाम के अंदर में नियम से द्रव्य होता है। और उसको द्रव्य को, उस अनुभूति को कर्ता कर्म का अनन्य बना कहते हैं, उसको अपरिणामी की अनुभूति नहीं कहते, उसको परिणामी कहते हैं। अपरिणामी पर्यायी में नहीं आता, लेकिन गायकपना आता है। गायकपना आता है माने जैसा गायक है ऐसा सामर्थ्य पूरा अनुभूति में आता है, पूरा का पूरा, लेकिन गायक नहीं आता, क्योंकि गायक अपरिणामी है। अपरिणामी परिणाम में कभी भी नहीं आता। कर्ता कर्म का अनन्य पना है, उसके अंदर में भी अपरिणामी उस परिणाम के अंदर में नहीं आता। ऐसी अद्भुत व्यवस्था है, ऐसी अद्भुत अंतरंग की स्थिति है। कारण के ज्ञाकार अवस्था में ज्ञायकपणे जे जणायो ते, जे ज्ञायकपणे जणायो ते स्वरूप प्रकाशन। माने ज्ञाकार अवस्था में जो ज्ञायक जानने में आता है वही ज्ञायक स्वरूप प्रकाशन के अवस्था में भी ज्ञायक ही है। ज्ञाकार अवस्था में जो ज्ञायक स्वरूप प्रकाशन की अवस्था में वही ज्ञायक, माने ज्ञाकार अवस्था का ज्ञायक दूसरा और स्वरूप प्रकाशन की अवस्था का ज्ञायक दूसरा, ऐसा नहीं है। ज्ञायक तो ज्ञायक ही है। इसका यदि दृष्टांत से देखा जाए तो इसमें जो दीपक का दृष्टांत दिया गया है ना, दीपक नहीं जेम छे ना, दीपक नहीं जेम, दीपक घटपटादी प्रकाश करवानी अवस्था में पण दीपक छे, ने पोताने पोतानी ज्योति रूप शिखानी प्रकाशवानी अवस्था में पण दीपक ज छे। जब घटपट आदि को दीपक प्रकाशित करता है तब वह दीपक ही है, और जब अपनी ज्योति रूप शिखा को प्रकाशित करता है तब भी दीपक दीपक ही है। तो दीपक दीपक ही है, इतनी वस्तु है। घटपट को प्रकाशित करना है या ज्योति रूप शिखा को प्रकाशित करना है, एक पर का प्रकाशन, एक अपना स्वपर्याय का प्रकाशन, लेकिन दोनों ही अवस्था के अंदर में प्रकाश प्रकाश रूप नहीं रहते हुए दीपक दीपक ही है। उसका दृष्टांत ऐसे देते हैं कि दीपक के अंदर में घटपट प्रकाशित होते हैं, तो ये घटपट प्रकाश के अंदर में घटपट प्रकाशित हुए कि प्रकाश घटपट संबंधी प्रकाश प्रकाशित हुआ, घटपट संबंधी प्रकाश प्रकाशित हुआ। अब घटपट संबंधी प्रकाश प्रकाशित हुआ कि वो प्रकाश का प्रकाश था, वो प्रकाश का प्रकाश था कि वो दीपक का प्रकाश था, दीपक का प्रकाश था कि वो दीपक दीपक था। बस वस्तु ऐसी है प्रभु, जब ज्ञान के अंदर में राग जानने में आता है तो राग का ज्ञान होता है कि राग संबंधी ज्ञान पर्याय का ज्ञान होता है। अब राग संबंधी ज्ञान पर्याय का ज्ञान होता है कि ज्ञान पर्याय का ज्ञान होता है। अब ज्ञान पर्याय का ज्ञान होता है कि ज्ञायक का ज्ञान होता है, ज्ञायक तो ज्ञायक। अब इतनी सी बात यदि बैठ जाए अंतरंग के अंदर में, बस ज्ञायक वो तो ज्ञायक है, मैं तो ज्ञायक वो तो ज्ञायक ही हूं, ऐसा विश्वास बैठ जाए तो वस्तु के ऊपर सीधी दृष्टि आती है, क्योंकि वस्तु समीप पड़ा हुआ है, एक समय की पर्याय में समीप पड़ा हुआ। समीप पड़ा मैंने पर्याय द्रव्य में नहीं जाता, द्रव्य पर्याय में नहीं आता, लेकिन मैं परमात्मा हूँ ऐसी दृष्टि होते ही अनुभूति हो जाती है। एक कार्य बहुत सरल, अपना स्वभाव अपने स्वयं और अपने को अपने स्वयं समझ में नहीं आवे ऐसा नहीं हो सकता। ये कर्ता कर्म का अनन्यपना है, स्यादवाद है, अनेकांत है, जैन शासन की अनुभूति है, कितनी अद्भुत होगी वो परिस्थिति। वो तारतम्य तम में फर्क रहता है चौथे गुणस्थान के और छठे सातवें गुणस्थान के अंदर, लेकिन अनुभूति तो अनुभूति है। वो छठे सातवें गुणस्थान में भी ज्ञायक तो ज्ञायक है, चाहे चौथे गुणस्थान में ज्ञायक ज्ञायक है, ज्ञान अवस्था के अंदर में ज्ञायक ज्ञायक है, तो बस ज्ञायक ज्ञायक है ऐसा जो जानता हो ज्ञानी हो जाता है, ज्ञायक ज्ञायक वो नहीं जानता हो अज्ञान और फर्क को देखते हुए अज्ञानी बना रहता है। वस्तु तो जो है सो है, जैसी है वैसी है, उसको मानना है, उसको स्वीकारना है, उसकी समझ करना है, उसका निर्णय करना है, और कुछ करना नहीं, वहाँ पे कुछ होता जाता नहीं है। द्रव्य स्वभाव त्रिकाला करता और परिणाम सदैव पलटता, और उस परिणाम का ज्ञान स्वभाव के अंदर में स्वपर का प्रकाशन, और स्वपर का प्रकाशन के अंदर में जब पर को जानता हूँ ऐसी दृष्टि जाती है, तो इंद्रिय ज्ञान का जन्म होकर अज्ञान चालू देता है, और स्व जानने में आता है, ज्ञायक जानने में आता है, क्योंकि ज्ञाकार अवस्था में तो ज्ञायक पड़े जे जनाए हो, तो अवस्था ज्ञाकार की, मैंने जब ज्ञ उसके अंदर में जनित जाते हैं उस समय वो अवस्था में ज्ञायक पने जानने में आता है, तो जिस समय ज्ञ जानने में आता है उस समय वो ज्ञायक पने जानने में आता है, वहाँ पे उसकी दृष्टि नहीं है, तो ज्ञ के ऊपर दृष्टि जाती है। जब ज्ञ के ऊपर दृष्टि जाती है तो विकल्प उठता है, विकल्प उठता है, अपनत्व होता है, इंद्रिय ज्ञान का जन्म होता है, और अज्ञान वही दृष्टि वहां से फिर कर पर जानने में नहीं आता, ज्ञ जानने में नहीं आता, क्योंकि ज्ञाकार अवस्था में ज्ञायक पने जे जनाए हो। अब ज्ञाकार अवस्था में ज्ञायक पने जनाए होगा उसका मतलब ये होता है कि ज्ञाकार अवस्था में ज्ञ जानने में नहीं आते, तू चला जाता है ज्ञ तक। खरेखर तो ज्ञान के अंदर में ज्ञान पर्याय का ज्ञान होता है ना, वो भी अपने कल पढ़ा था गुरुदेव श्री का शब्द, ज्ञाकार थयो ये ज्ञानाकार पोता नो छे, 215 नंबर के प्रश्न पे अपने कल लिया था स्वाध्याय में, ज्ञाकार थयो ये ज्ञानाकार पोता नो छे, आउ छे छे ने, ज्ञाकार थयो ये ज्ञानाकार माने ज्ञाकार थयो ज नथी, वो ज्ञानाकार है, वो ज्ञान का परिणाम है, वो ज्ञान के अंदर में ज्ञान जानने में आता है, ऐसा आचार्य भगवान कहते हैं, ऐसा गुरुदेव कहते हैं, ऐसा तीर्थंकर परमात्मा कहते हैं, ज्ञानाकार थयो ये ज्ञानाकार पोतानो छे, आवू छे, तने लगे छे कि नहीं जणाय छे, पण प्रभु तने ज्ञान नी पर्याय जणाय छे, और जब पर जानने में आता तब भी ज्ञान की पर्याय जानने में आती है, और जब स्व जानने में आता तब भी ज्ञान की पर्याय जानने में आती है, और ये ज्ञान पर्याय का निश्चय है। पहला पैराग्राफ के अंदर में द्रव्य का निश्चय दिया, दूसरे पैराग्राफ के अंदर में पर्याय का निश्चय दिया, द्रव्य और पर्याय का निश्चय समझकर मैं परमात्मा हूँ ऐसा अहम हुआ तो भेद विकल्प मिटकर निर्विकलता होते ही जैसा आत्मा ऐसा आत्मा का स्वसंवेदन हो जाता है, असंख्य प्रदेश के अंदर में आनंद 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 हो जाता है, कोई विकल्प नहीं रहता, निर्विकल्प वस्तु निर्विकल्प अनुभूति, अभेद ध्येय और अभेद ज्ञेय, ऐसा अभेद ध्येय पूर्वक जो अभेद ज्ञेय हुआ उसका नाम जैन शासन की अनुभूति है। समय एक है, अभेद ध्येय पूर्वक अभेद ज्ञेय हुआ, समय एक है, जो ध्येय है वही ज्ञेय है, लेकिन जो ज्ञेय है वो ध्येय नहीं है, क्या कहा, जो ध्येय है वही ज्ञेय है लेकिन जो ध्येय है वो ध्येय नहीं है, क्योंकि ध्येय परिणाम से रहित, प्रमत अप्रमत से रहित भगवान आत्मा है, और जो ध्येय हुआ वो पर्याय से सहित हुआ ऐसा भगवान आत्मा है, परिणामी है। वहाँ अपरिणामी था, यहाँ पे परिणामी है। तो परिणामी ध्येय और अपरिणामी ध्येय, अपरिणामी ध्येय पूर्वक परिणामी ज्ञेय, उसका नाम है आत्मा की अनुभूति, उसका नाम है स्याद्वाद, उसका नाम है अनेकांत, उसका नाम है सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान, उसका नाम है जैन शासन की अनुभूति, उसका नाम है प्रमाण ज्ञान का जन्म। तो ऐसी अद्भुत वस्तु है, ऐसी अद्भुत वस्तु व्यवस्था है। ये वस्तु व्यवस्था जिसको भी समझ में आती है, ज्ञायक तो ज्ञायक है, इतना ख्याल में आते ही आत्मा की अनुभूति हुए बिना नहीं रहती। अपरिणामी प्लस परिणाम तो हो गया परिणामी। परिणामी के अंदर में अपना स्वभाव का आनंद, अपनी वस्तु का रसास्वादन, अपने वस्तु का स्वसंवेदन, अपने वस्तु की अनुभूति, बस उसके अंदर में मस्त हो जाता है। फिर जब बाहर आता है तो फिर मैं अपरिणामी।
ध्येय एक नहीं है,
जो ध्येय है वो अनादि अनंत ध्येय है, जो ध्येय है वो अनादि अनंत ध्येय है। वो देखे तो भी ध्येय, ना देखे तो भी ध्येय, अपरिणामी सदा ही ध्येय है। और ध्येय पूर्वक ज्ञेय, मैंने जब आत्मा की अनुभूति होती है तब ध्येय पूर्वक ज्ञेय होता है। जब अनुभूति हुई आत्मा की तो ध्येय पूर्वक ज्ञेय हुआ, जैसा आत्मा है ऐसा परिणामी आत्मा अनुभूति में आ गया। उसमें पहले और पीछे की बात नहीं है। इसके अंदर में जो ज्ञेय, मैंने आप यदि परिणामी को ध्येय बनाओगे तो ऐसा हो सकता है, पर्याय सहित का द्रव्य कभी ध्यान का ध्येय नहीं बन सकता। अपरिणामी द्रव्य ही ध्यान का ध्येय होता है और परिणामी द्रव्य ज्ञान का ध्येय होता है। उसलिए गुरुदेव सिंह ने ऐसा कहा, जब पर्याय से रहित आत्मा ध्यान का ध्येय बनता है तब पर्याय से सहित आत्मा ज्ञान का ध्येय बनता है। फिर से, जब पर्याय से रहित आत्मा ध्यान का ध्येय बनता है तब पर्याय से सहित आत्मा ज्ञान का ध्येय बनता है। ज्ञेय जब अनुभूति में ज्ञेय बनता है तब पर्याय से सहित आत्मा होता, पूरा परिणाम ही होता, द्रव्य पर्याय स्वरूप आत्मा होता, द्रव्य पर्याय दोनों का ज्ञान। लेकिन द्रव्य पर्याय में नहीं आता, पर्याय द्रव्य में नहीं आता। उस अनुभूति से बाहर आने के बाद पता चलता है कि अपरिणामी अस्पर्श्य है, वो स्पर्श करके पता चलता है अस्पर्श्य। ध्येय में आप एकाग्रता करवाना
ध्यारे आपको ध्येय हो छे
ध्यारे ध्येय जो हो छे ત્યારે જ્ઞેયની ચર્ચા જ નથી, ત્યારે તો ધ્યેય પર્યાયથી રહિત આત્મા તે હું પરમાત્મા છું, હું અપરિણામી છું, હું નિષ્ક્રિય છું, હું ધ્રુવ છું, હું જ્ઞાયક છું, હું પંચમ પરમ પરિણામી ભાવ છું, ઓસી કા નામ ધ્યેય, વહાં પે જ્ઞેયની ચર્ચા જ નહીં। ધ્યેય તો ધ્યેય બસ, પરિણામી જ્ઞેય હોતા હૈ, અપરિણામી ધ્યેય હોતા હૈ।
શ્રદ્ધાનો વિષય ધ્યેય છે તો જ્ઞાનનો વિષય શું છે?
અનુભૂતિ કે પહેલે, अनुभूति के पहले श्रद्धा में भी ज्ञायक होता है और ज्ञान में भी ज्ञायक होता है। श्रद्धा में भी एकांत होता है और ज्ञान में भी एकांत होता है। ज्ञान के अंदर में सुधने का विषय भगवान आत्मा होता है और श्रद्धा के अंदर में श्रद्धा का विषय अपरिणामी होता है। जब श्रद्धा और ज्ञान, दर्शन और ज्ञान दो उपयोग है, अब दोनों यदि एक साथ द्रव्य की तरफ चले तब युगपद अनुभूति होती है, एक आगे और एक पीछे, ऐसा नहीं होता। ज्ञान के अंदर में दोपना और श्रद्धा के अंदर में एकांत, श्रद्धा के अंदर में एकांत और ज्ञान के अंदर में अनेकांत, ऐसा नहीं होता। श्रद्धा के अंदर में भी ज्ञायक और ज्ञान के अंदर में भी ज्ञायक, ऐसा सम्यक एकांत, ऐसा सच्चा एकांत जब होता है कि ज्ञान के अंदर में भी ज्ञायक है और श्रद्धा के अंदर में मैं ज्ञायक, ऐसा जब एक साथ जब अंतरंग पर चलता है तब आत्मा की दृष्टि होकर आत्मा की अनुभूति होती है, तब सम्यक अनेकांत का जन्म होता है, तब ध्येय पूर्वक ध्येय होता है, तब वो परिणामी कहलाता है। दृष्टि का विषय अपरिणामी और अनुभूति हुई तो परिणामी, फिर परिणामी से विकल्प में आया तो फिर मैं अपरिणामी, फिर वो परिणामी की चर्चा नहीं करता, सम्यक ज्ञान की चर्चा नहीं करता, वो सम्यक ज्ञान के विषय की चर्चा करता है। अपरिणामी की आज मुनिराज को क्या होता है, छठे सातवें गुणस्थान के अंदर में झूलते हैं कैसे, विकल्प में जहाँ आए तो मैं चला गया हूँ, चला गया, उसको विकल्प नहीं करना पड़ता। इतना अपनत्व, इतना एकत्व तो अपने स्वभाव के साथ हो गया। तो एकांत तो उसको कहते हैं कि श्रद्धा के अंदर में भी एकांत और ज्ञान के अंदर में भी एकांत। उसलिए कृपणुदेव ने कहा कि अनेकांत पण सम्यक एकांत एवं निज पत्नी प्राप्ति सिवाय अन्य हेतु ये उपकारी नहीं। क्योंकि अनेकांत माने अस्थि नस्ति अनेकांत, હું દ્રવ્યપણે છું ને પર્યાયપણે નથી એનું નામ અનેકાંત. ને હું દ્રવ્ય જ છું એ એકાંત.
વો
સમ્યક એકાંત. દ્રવ્ય જ છું એસા નિશ્ચય હોતે હી, એસા વિશ્વાસ હોતે હી, એસા હું પરમાત્મા છું એસા નક્કી હોકર, હું પરમાત્મા છું એસા નિર્ણય હુઆ, તત્વ નિર્ણય હુઆ, તો પરમાત્મા તત્વ કે ઉપર દ્રષ્ટિ જાતી હૈ, પરમાત્મા તત્વ કે ઉપર નજર જાતી હૈ, પરમાત્મા તત્વ કા લક્ષ્ય હોતા હૈ, પરમાત્મા તત્વ કા અહમ હોતા હૈ, પરમાત્મા તત્વ મેં અપનત્વ હોતા હૈ, વો અપનત્વ હોતે હી આત્મા કી અનુભૂતિ હો જાતી હૈ, તો પરિણામી કહેલાતા. વો કર્તા કર્મ કા અનન્યપના, સ્વયં કર્તા સ્વયં કર્મ, પોતે કર્તા પોતે કર્મ. વહાં પર ન દ્રવ્ય પર્યાય કી ચર્ચા હૈ, ન ગુણગુણી કી ચર્ચા હૈ, મને વહાં પર જો હૈ વો આત્મા હૈ, અનુભૂતિ મેં જો આયા સો આત્મા. એસી અદ્ભુત વ્યવસ્થા હૈ. જ્ઞાન ઓર શ્રદ્ધા દોનો કે અંદર મેં જબ એકાંત હોતા હૈ, તો ઉસી એકાંત કે પક્ષ મેં તો જબ અનુભૂતિ હોતી હૈ, તો અનુભૂતિ કે પહેલે કે જો સમય હૈ ઉસકો એકાંત કા પક્ષ કહાતા હૈ, નિશ્ચયને કા પક્ષ કહેલાતા હૈ. ઓર વો પક્ષ ભી જબ ખટકતા હૈ તો પક્ષાતિક્રાંત હો જાતા હૈ. વસ્તુ અદ્ભુત હૈ, અલૌકિક હૈ. इस गाथा के अंदर में पूज्य गुरुदेव श्री ने जितना स्पष्टीकरण किया है वो उसका कोई मेल कहीं पे मिला नहीं जा सकता. एक गुरुदेव श्री का उपकार का शब्दों में वर्णन किया नहीं जा सकता. उसके वर्णन यदि करना हो तो आपको मौन धारण करना पड़े और गुरुदेव के पीछे पीछे वन जंगल चला जाना पड़े. इसके अलावा गुरुदेव की महिमा गाई नहीं जा सकती. वस्तु की इतनी अद्भुतता, इतनी अलौकिकता, इतनी सरलता से समझा देना કે ભાઈ પ્રભુ તુજે દ્રવ્ય કભી ભી પર્યાય મેં નહીં આતા, તુજે ઉસકા નજર કરના, તુજે ઉસકી દ્રષ્ટિ કરની, તુને સબ કુછ કિયા, લેકિન મેં પરમાત્મા હું એસી દ્રષ્ટિ નહીં કી, એસા અભિપ્રાય તેરા તૈયાર નહીં હુઆ, તો આજ તુ એસ અભિપ્રાય કે અંદર મેં પરમાત્મા હું એસા વિશ્વાસ કર. સમ્યક દર્શન કે પીછે મત દોડ, વો પર્યાય દ્રષ્ટિ કહેલાયેગી. મેં પરમાત્મા હું એસા વિશ્વાસ કર તો સમ્યક દર્શન સ્વયં મેં હોગા. ઓર બાબુજી એ વાત હંમેશા કહા કરતે થે કે ધર્મ કે લિયે કભી પ્રયત્ન નહીં હોતા, ધર્મ તો ફલ હોતા. સમ્યક દર્શન, સમ્યક જ્ઞાન, સમ્યક ચરિત્ર ધર્મ હૈ. ધર્મ કે લિયે પ્રયત્ન નહીં હોતા હૈ, વસ્તુ કે સ્વભાવ કો સમજને કે લિયે પ્રયત્ન હોતા હૈ. એક ગાછ કે ઉપર મેં પેડ મેં જબ ફલ લગતા હૈ ઉસકે લિયે કિસી કો પ્રયત્ન નહીં કરના પડતા હૈ, લેકિન ઉસકા સિંચન જો કરના પડતા હૈ વો મૂલ મેં કરના પડતા હૈ. મૂલ કે અંદર મેં દ્રવ્ય ઓર પર્યાય ઇસકો અપેક્ષાઓ સે નહીં દેખકર, સ્વભાવ સે દેખકર, નિરપેક્ષ વ્યવસ્થા કો દેખકર, દોનો કી નહીં કી અપેક્ષા સે દોનો કી સત્તા કો સમજકર, દ્રવ્ય સત્તા ઓર પર્યાય સત્તા કો ભિન્ન ભિન્ન જાનકર, ઉનકા દ્રવ્ય ક્ષેત્ર કાલ ભાવ કો સમજકર, મેં પરમાત્મા માત્ર નિર્વિકલ્પ વસ્તુ હું એસા વિશ્વાસ કરકે, એસા નક્કી કરકે, એસા નિર્ણય કરકે, જેસે કલ અપની ચર્ચા ચલી, ભાઈ સાહેબને ભી લિયા, ચેતનભાઈને ભી લિયા, કે પ્રમાણ મેં સે નહીં કો નિકાલના, જો પ્રમાણ મેં સે નહીં કો નિશ્ચય નહીં કો નિકાલતા હૈ વો જિન પ્રવચન કે અંદર મેં કુશલ હૈ. તો અપને આજ તક તીન બાત કે લિયે રુકે હૈ, વે અનાદિ સે વ્યવહાર કા પક્ષ, પ્રમાણ કા લોભ ઓર નિશ્ચયાભાસ કા ડર. વ્યવહાર કા પક્ષ, પ્રમાણ કા લોભ ઓર નિશ્ચયાભાસ કા ડર, ઉસકે વજહ સે વો નિશ્ચય કે પક્ષ મેં નહીં આ પાયા. ઓર નિશ્ચય કા પક્ષ એસા હોતા હૈ, અપૂર્વ પક્ષ હોતા હૈ, અનાદિ કાલ મેં નહીં હુઆ એસા પક્ષ હોતા હૈ, વો તત્વ નિર્ણય કે બલ પે હોતા હૈ. ઓર જબ મેં પરમાત્મા તત્વ હું એસી નિસંગતા સે જો આગે બઢતા હૈ, ઉસકો નિશ્ચયાભાસ કા ડર નહીં હોના ચાહિયે. નિશ્ચયાભાસ કા ડર ક્યો નહીં હોના ચાહિયે, જિનકે અંતરંગ કે અંદર મેં ગુરુદેવ શ્રી હૈ ઓર મસ્તિષ્ક કે ઉપર મેં જિનવાણી હૈ, વો કભી નિશ્ચયાભાસી નહીં હો સકતા. ઉસકો નિયમ સે નિશ્ચય કા અભ્યાસ હોગા, નિશ્ચયાભાસી નહીં હોગા, એસા જ્ઞાનીઓ કા વચન હૈ. અપન વસ્તુ વ્યવસ્થા કો સમજ કર, દ્રવ્ય સ્વભાવ ઓર પર્યાય સ્વભાવ કો સમજ કર, મેં પરમાત્મા માત્ર નિર્વિકલ્પ વસ્તુ હું એસા જ્ઞાન શ્રદ્ધાન કરકે, મેં પરમાત્મા હી હું એસા શ્રદ્ધાન કરકે, સભી જીવ સાદી અનંત કાલ કે લિયે શુદ્ધાત્મા મેં લવલીન હો જાય, લીન હો જાય ઓર અનંત કાલ તક અપને સ્વભાવ કા આનંદ ભોગતે રહે, અનુભવતે રહે, કિસી મંગલ ભાવના કે સાથ. સાડા દસ
આપણે કહી શકીએ કે આ બધાનો નિચોડ એ છે કે જાણનારો જણાય છે ખરેખર પર જણાતો,
એકદમ 100% આવી છે વાત એ છે 100% કે ખરેખર પર જણાતું નથી, જાણનારો જણાય છે એટલે પોતાનો ભગવાન આત્મા જણાય છે. અને એ વાત પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રી આખા પ્રવચનની અંદરમાં કીધી છે. જો હું ગુરુદેવના શબ્દો વાંચવામાં 223 પૃષ્ઠ ઉપર છે, દીવો ઘટ એટલે ઘડો અને પટ એટલે વસ્તાદી, કોયલા અને નાગ અને પ્રકાશવા કાળે પણ દીવો તો દીવા રૂપે રહીને પ્રકાશે છે, પર રૂપે થઈને તે પ્રકાશે છે. પ્રશ્ન પૂછે છે અને પરને પ્રકાશે છે એ તો દીવો દીવાને પ્રકાશે છે અને પોતાના પ્રકાશને પણ પ્રકાશ કાઢે પોતે દીવો દીવાને પ્રકાશે છે. 223 પૃષ્ઠ વચ્ચે છે. ફરીથી વાંચું છું, દીવો ઘટ એટલે ઘડો અને પટ એટલે વસ્ત્રાધીન, કોયલા કે નાગ અને પ્રકાશવા કાળે પણ દીવો તો દીવા રૂપે રહીને પ્રકાશે છે. એ દીવો ઘટપટની અંદરમાં જઈને ઘટપટની સાથે એક રૂપ થઈને ઘટપટને નથી પ્રકાશતો, એ દીવો દીવા રૂપે રહીને પ્રકાશે છે, પર રૂપે થઈને પ્રકાશે છે અને પરને પ્રકાશે છે એ તો દીવો દીવાને પ્રકાશે છે અને પોતાના પ્રકાશને પણ પ્રકાશવા કાઢે પોતે દીવો દીવાને પ્રકાશે છે. પરને પ્રકાશવા કાઢે પણ દીવો દીવો છે અને પોતાને પ્રકાશવાને કાઢે પણ દીવો દીવો છે. એમ ભગવાન આત્મા જાણનારો જણાય છે તે અવસ્થામાં પણ જ્ઞાયક પણ જ પોતે રહ્યો છે, પરપણે થયો નથી ને પરને લઈને નથી થઈ દશા, અને પોતાને જાણવા કાળે પણ પોતે જ પોતાની પર્યાય થઈ હતો. હવે આવું બધું યાદ રાખવું, આવો મારે પ્રભુનો બાપુ અને મારે જીનવરદેવ સિવાય ક્યાંય છે નહીં. પછી જો એક પેરેગ્રાફ છોડીને પછી અન્ય કાંઈ નથી તેમ જ્ઞાયકનું સમજવું, એટલે જાણનારો ભગવાન સ્વને જાણતા પર્યાયમાં સ્વને જાણ્યો, સ્વને જાણતા પર્યાયમાં સ્વને જાણ્યો, તેવી જ પર્યાયમાં પરને પણ જાણ્યું. એ પરને જાણવાની પર્યાય થઈ પોતાથી જ થઈ છે, એટલે ખરેખર તો પોતાની પર્યાયને એણે જાણી છે. જ્યારે પરને જાણે છે ત્યારે એણે પોતાની પર્યાયને જાણી છે, પરને નથી જાણ્યું, કારણ કે પરની સાથે તન્મય નથી, પરની અંદરમાં જાતું નથી, જ્ઞાન જ્ઞેયમાં જતું નથી, જ્ઞેય જ્ઞાનમાં આવતું નથી. એ જ્ઞેયને જાણે કેવી રીતે? અને જ્ઞાયકને તો એટલે જાણે છે કે જ્ઞાયકની સાથે જ્ઞાન તન્મય છે, જેની સાથે તન્મય છે એને જાણે છે અને જેની સાથે અતન્મય છે એને જાણતું નથી. એટલે એ જ્યારે પરને પ્રકાશે છે ત્યારે પણ એ પોતાની પર્યાયને જાણે છે, અને સ્વને પ્રકાશે છે ત્યારે પણ એ પોતાની પર્યાયને જ જાણે છે. ખરેખર એ જ્ઞાયકને પણ જાણતું નથી અને પરજ્ઞેયને પણ જાણતું નથી, એ વાસ્તવિકતા છે. એમ છતાં જ્ઞાન અને જ્ઞાયક સ્વભાવથી અભિન્ન હોવાને કારણે એ જ્ઞાયકને જ જાણે છે, પરને જાણતું જ નથી. એ વાત છે, કારણ કે પર્યાયમાં કોઈ જ્ઞેય આવ્યા નથી. જો ગુરુદેવશ્રી સ્પષ્ટીકરણ કરે છે, કારણ કે પર્યાયમાં કોઈ જ્ઞેય આવ્યા નથી, ઘટપટને દીવો પ્રકાશે છે એટલે કાંઈ દીવાના પ્રકાશમાં ઘટપટ કાંઈ આવી ગયા નથી ને દીવાના પ્રકાશમાં તેઓ કાંઈ પેઠા નથી, એમ ભગવાન ચૈતન્ય દીવો ચૈતન્ય ચંદ્રપ્રભુ એવું જેને અંતરમાં જ્ઞાન થયું રાગથી, રાગથી ભીન થઈને સર્વજ્ઞ સ્વભાવી આત્મા છે એમ જ્યાં ભાન થયું ત્યાં અલ્પજ્ઞ પર્યાયમાં સર્વજ્ઞ સ્વભાવનું ભાન થયું, એ અલ્પજ્ઞ પર્યાય થઈ તે સર્વજ્ઞ સ્વભાવની છે, એ જ્ઞાયકની પર્યાય છે, એને જાણે અને એ પર્યાય પરને જાણે, એ પર્યાય પણ જ્ઞાયકની પર્યાય છે, એ પરની પર્યાય છે અને પરને લઈને થઈ છે એમ છે નહીં. કે ભાઈ એને સ્વભાવનો તો વિશ્વાસ કરવો પડશે, જે સ્વભાવની વ્યવસ્થા છે એ વ્યવસ્થાની બહાર સ્વભાવ સમજાશે નહીં. જે જ્ઞાન પરને પ્રકાશિત કરે છે એ જ જ્ઞાન જ્ઞાયકને પ્રકાશિત કરે છે. હવે એ જ્ઞાનની અંદરમાં પર આવતું જ નથી અને એ જ્ઞાનની અંદરમાં જ્ઞાયક જ છે, એટલે જ્ઞાયકાર અવસ્થાની અંદરમાં જ્ઞાયક પણ જ જરૂર છે, જ્ઞાયક પણ જ છે, જ્ઞાયક પણ જણાયો છે, જણાય જ્ઞાયક છે એમ નહીં, જ્ઞાયક પણ જણાયો છે, એટલે જણાય છે સૌ કોઈને જ્ઞાયક. મને જ્ઞાયક જણાય છે, પર જ્ઞાયક જણાય છે એવી એને ભ્રાંતિ થઈ છે, અને એ ભ્રાંતિની અંદરમાં એનું લક્ષ પર તરફ જાય છે, જેને એ જોવે છે જેને એ જાણે છે એમાં એનું અહમ થાય છે, એકત્વ થાય છે, ઇન્દ્રિય જ્ઞાનનો જન્મ થાય છે અને એ અજ્ઞાની થઈ જાય છે, અને એ જ્ઞાન નિમિત્ત રૂપે પરિણમી જાય છે, અને એ નિમિત્ત થઈ જતા એવો જ નૈમિતિક ભાવ અહીંયા ઉત્પન્ન થાય છે, એનું નામ અજ્ઞાન છે.
પ્રકાશિત
હોતા ગયા કા રખા ન્યાયકાર અવસ્થામાં ન્યાયપણે જે જણાય, તો ન્યાયકાર અવસ્થાને ઉડાડી નથી. જ્ઞાનની અંદરમાં સ્વપરનું પ્રકાશન થાય છે, સ્વપરનો પ્રતિભાસ થાય છે, સ્વપર પ્રતિબિંબિત થાય છે, પણ પર એમાં આવતું નથી. કારણ કે જ્ઞાન જ્ઞેયમાં જતું નથી, એટલે જ્ઞેયનું જ્ઞાન થતું નથી, એટલે પરનું જ્ઞાન થતું નથી. થાય છે જ્ઞાન પર્યાયનું જ્ઞાન. જો જ્ઞાન જ્ઞાયકાર હોવા ઉસમે જ્ઞેય કા ક્યા હૈ આપ બતાઓ. જો જ્ઞાન જ્ઞાયકાર હોવા ઉસકે અંદર મેં જ્ઞેય પદાર્થ કા ક્યા હૈ. કલ જૈસે કા દર્પણ મેં મોર હૈ, તો મોર કિસકા હૈ? દર્પણ કા મોર હૈ, મોર કા મોર નહીં વહાં પર. અબ દર્પણ કા મોર તો દર્પણ હૈ. દર્પણ કે અંદર મેં સો પદાર્થ દિખતે હૈ. અબ સો પદાર્થ મેં સે કિતને પદાર્થ દર્પણ મેં આતે હૈ? तो दर्पण के सो पदार्थ दर्पण के, उसी तरह से ज्ञान के अंदर में जो कुछ भी जानने में आता है वो ज्ञान की संपत्ति है, ज्ञान का वैभव है. जो ज्ञान शरीर से बना हुआ है, ज्ञान का ही समृद्धि है, ज्ञान का वैभव है, वो ज्ञान से बना हुआ. इसे कहा ना समुद्र के ऊपर में या तालाब के अंदर में चंद्र दिखता है, तो पानी का चंद्र है. चंद्र का उसमें क्या है? पानी पानी और पानी है. चंद्र पानी का चंद्र वो भी एक अपेक्षा है. पानी की निर्मलता में चंद्र जानने में आता है, वो भी एक अपेक्षा है. सही में तो पानी पानी और पानी है, ज्ञायक ज्ञायक और ज्ञायक है. ऐसी अद्भुत वस्तु की व्यवस्था है. वस्तु की व्यवस्था पूज्य गुरुदेव श्री ने बहुत स्पष्ट की है, अत्यंत स्पष्ट की है. जहाँ पर किसी को भी किंतु परंतु का कोई प्रश्न न रहे और निसंक बने तत्व निर्णय करें. देखिए तत्व निर्णय अपने को करना है, गुरुदेव करवा नहीं सकते. गुरुदेव बता सकते हैं कि आप भगवान आत्मा हो, लेकिन भगवान बना नहीं सकते. जब वो भगवान बता दिया तो अपने को निर्णय अपने को करना है और अपने स्वतंत्र ही करना होगा. दरेक आत्मार्थी को स्वतंत्र निर्णय करना होगा. किसी के साथ चल के वो निर्णय नहीं ले सकता. मेरा निर्णय मेरे पास, आपका निर्णय आपके पास, क्योंकि सबको निर्णय स्वयं ही करना पड़ता है और निसंकता से करना. निर्णय हमेशा निसंक होना चाहिए, किंतु परंतु वाला नहीं. लेकिन वो अनुभूति तो पर्याय में होती है ना, वो पर्याय आनंद देता है ना, वो मोक्ष मार्ग तो पर्याय में होता है ना, वो मोक्ष का कारण तो मोक्ष मार्ग है ना. तो पर्याय का ही प्रेम रहेगा, पर्याय की दृष्टि ही बनी रहेगी. मैं अपरिणामी परम पारिणामिक निर्विकल भाव मात्र वस्तु हूँ, जो सकल निरावरण अखंड एक प्रत्यक्ष प्रतिभासमय अविनश्वर पारिणामिक परम भाव लक्षण वही परमात्मा द्रव्य मैं हूँ, ऐसा निश्चय नहीं होगा. और जब तक निश्चय नहीं होगा तब तक वो निसंक नहीं होगा, और निसंक नहीं होगा तो निसंग नहीं होगा. तो निसंगता से उसको निर्णय तो करना ही होगा कि मैं कौन हूँ, मैं द्रव्य हूँ कि मैं पर्याय हूँ. जब मैं बने की बात आती है तो एक में अहम होता है, अहम दो में नहीं हो सकता. ज्ञान दो का हो सकता है, अहम एक का होता है. श्रद्धान एक का और ज्ञान दो का, ज्ञान अनेक का भी हो सकता है, लेकिन श्रद्धान तो हमेशा एक का ही होता है. अहम चाहे द्रव्य में करे चाहे पर्याय में करे. अनादिकाल से एक समय के लिए भी द्रव्य में अहम नहीं किया. जितना भी अहम रहा परिणाम के अंदर में रहा, किसी न किसी अपेक्षा से, चाहे पर पदार्थ के प्रीति के कारण, चाहे पर पदार्थ को छोड़ने के अभिप्राय के कारण, चाहे आश्रम का अभाव करने के कारण, या संवर को प्रकट करने के लिए, मोक्ष को प्रकट करने के लिए, परिपूर्णता को प्रकट करने के लिए, उसकी दृष्टि हमेशा पर्याय के ऊपर बनी रही. तो इसको पर्याय दृष्टि कहते हैं. पर्याय दृष्टि छुड़ानी है, पर्याय नहीं छुड़ानी है. पर्याय छुड़ती नहीं है, पर्याय का स्वभाव छुड़ता नहीं है. उत्पाद व्यवस्था सिद्धशा में भी बनी रहती है. तो इससे उसको कुछ भी करने की बात नहीं है. प्लस उसको यदि उसकी क्रमबद्धता समझ में आवे, उसका थवा योग्यपण उन्हें समझ में आवे, जिस समय जो पर्याय होनी है उस समय वही पर्याय होती है. यह व्यवस्था जिसको समझ में आवे उसको पर्याय दृष्टि मिटती ही है और द्रव्य के ऊपर दृष्टि जाती है. द्रव्य के ऊपर दृष्टि जाना माने मैं परमात्मा हूँ ऐसा विश्वास करना. द्रव्य दृष्टि में दृष्टि नहीं होती है, द्रव्य दृष्टि में मात्र द्रव्य होता है. और वो द्रव्य मैं हूँ उसका नाम द्रव्य दृष्टि है, उसका नाम निश्चय नहीं का पक्ष है. ऐसा पक्ष सहज मात्र में हो सकता है, क्योंकि वस्तु नयातीत है, वस्तु पक्षातिक्रांत है, वस्तु परिपूर्ण है, वस्तु अनादि अनंत है, वस्तु नित्य है, उद्योत रूप है, स्पष्ट प्रकाशमान ज्योति है. प्रत्येक समय प्रत्येक जीव को भगवान आत्मा प्रत्यक्ष है और वो मैं ही हूँ ऐसा विश्वास हुआ. तो जो भगवान आत्मा उसको तिरोभूत हो रहा था वो प्रत्यक्षता में उसकी आविर्भूत हुआ. अब ये आविर्भूत और तिरोभूत दोनों ही पर्याय अपेक्षा का कथन है. आत्मा न तो आविर्भूत होता है न तो तिरोभूत होता है, वो तो सदा ही प्रत्यक्ष रहता है, सदा ही प्रकटमान रहता है, सदा ही विद्यमान रहता है, सदा ही व्यक्त रहता है. जब आप देखो दर्शन देता हुआ बैठा है, जब आप मैं हूँ ऐसा विश्वास कर लो तो उसका परिणाम के अंदर में दर्शन हो जाता है. सभी जीवों को अपना भगवान आत्मा का सहज मात्र में दर्शन हो, उसी मंगल भावना के साथ.
Thank you.